राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
एक पूजा आया है, उसने प्रश्न पूछा है कि जीव की मुक्ति होने के बाद उसे कभी आना नहीं पड़ता अथवा उसकी कोई अवधि है वो अवधि के बाद आना पड़ता है। तो मुक्ति बात आना नहीं पड़ता, ये जन्म मरण होता है कर्मों के अधीन। मुक्ति होना नाम कर्मों से छुटकारा हो गया, तो छुटकारा होने पर कैसे मुक्ति होगी, आवा कैसे हो जाएगा, वो तो मुक्त हो गया हो गया। वास्तव में जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भरे वो गुसाई बंजो कीर मरकट के नाई। ये माया के बस में हो गया इस बार जन्म होता है, नहीं तो जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सुख स्वरूप है, तो वो मुक्त होने पर फिर जन्म मन में नहीं आता। इसमें कोई शंका करे तो जीव घट जाएंगे, तो इसकी चिंता आप न करें। जीवों का अंत नहीं है, अनंत है, अनंत 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 उसको कहते हैं कि जिसकी संख्या नहीं अंत नहीं सीमा न हो। एक एक मनुष्य के शरीर में जो खून है और खून में कीड़े हैं लाखों करोड़ों अरबों कीड़े हैं खून में, एक एक जीव के खून में से है। अब सब जीवों की संख्या कैसे करोगे आप, एक एक खेत में धूप कितनी है, कीड़ी नगर कितना है, एक नगर नगर एक में कीड़ा कितनी है, पशु है आती जैसे शरीर है भैंसा जैसा है उनके खून में अनगिनती के कीड़े हैं, अनगिनती के उनके मैले में कीड़ा है, पेशाब में कीड़ा है, शरीर में कीड़ा है और ये थूक आदि इनमें कीड़ा है, शरीर में सब जगह कीड़ा ही कीड़ा है। और अति कीड़े इतने फैल रहे हैं जिनमें जैन लोग मोमती मानते हैं तो हमारी भाव से कई कीड़े मर न जाए, तो कीड़ों का कोई अंत नहीं है, उत्ता ही नहीं है। इस वास्ते मुक्ति होने के बाद पीछे नहीं आते, ये सिद्धांत है। मुक्ति हुई है वो भी जीव ने अपने मर्जी से की है, तो मुक्ति तो स्वतः है, बंधन इसका खुद का किया हुआ है बढ़ाया हुआ है, बड़ा होगा निमटने के बाद मुक्ति से तो पीछे लौट कर नहीं आते, यही सिद्धांत ठीक है। अगर कोई माने कि भाई पीछे आते हैं तो महासर्ग में आदि में आते हैं, तो महाप्रलय के समय किसी ने भजन ध्यान किया और मुक्त हो गया, और महाप्रलय में सुबह आना पड़ता है तो क्या फायदा हुआ? महाप्रलय में सुबह जी वैसे भी जाते वो मुक्ति में चला गया, वो भी आ जाएगा। कई युक्तियों से और शास्त्रों से ये बात ठहरती नहीं, मुक्ति के बाद पीछे आ जाए। और सच्ची बात तो यह है कि अपनी मुक्ति करके देखो, कहने सुनने से क्या होगा, अपनी मुक्ति करके देखो। देखो संसार का ज्ञान तो संसार से अलग होने पर होता है, जब संसार में रचा पचा रहता है राग द्वेष हर्ष शोक होते हैं, तब तक उसको संसार का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। और परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा से अलग रहकर परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते, ये कायदा है, याद रखो सदा के लिए। नाशवान का ज्ञान तो नाशवान से अलग होने पर होगा, अविनाशी का ज्ञान अविनाशी से अभिन्न होने पर होगा, अलग रहने पर अविनाशी ज्ञान नहीं होता, और संसार के साथ रहने पर संसार का ज्ञान नहीं होता। कौन मुक्त होता है क्या इसका ज्ञान नहीं होता? मेरी तो प्रार्थना है कि मानव शरीर है ये मुक्ति का अवसर है, इसी शरीर में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम है सरल है, इतना सुगम सरल काम संसार में कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, इतनी बात है। अब इस पर विश्वास आप न करो, इसके लिए खोज न करो, तो उसके तो कोई उपाय नहीं है, ऐसी बात है। और मुक्ति के अधिकारी सब जीव है, परमात्मा के अंश है ना, तो परमात्मा को प्राप्त करने के सब अधिकारी है। माँ की गोद के अनधिकारी कौन से बालक है सब? कौन से बालक माँ की गोदी में जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते? माँ के ही बालक है, उसके लिए माँ की गोद भी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? और जगह तो अधिकार होगा, योग्यता होगी, विद्या होगी, उससे मिलेगा अधिकार, तो माँ के तो अधिकार स्वतः है। इस बार परमात्मा अंश होने से परमात्मा प्राप्ति का अधिकार सबको जन्म सिद्ध स्वतः सिद्ध है। उस तत्व की प्राप्ति की बहुत ही सुगमता है, बहुत ही सरलता है। कठिनता क्या है कि संसार का राग आसक्ति ये छूटना कठिन है, ये छूटने पर परमात्मा प्राप्ति कठिन हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। और वो संसार की आसक्ति आपकी खुद की हुई है, वो खुद को छोड़नी पड़ेगी। सहायता देने वाले गुरु महाराज है, संत महात्मा है, भगवान है, शास्त्र है, और संसार के लोग भी सहायता करने के लिए तैयार है। ऐसी मैंने कई बातें देखी है, केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों की है और देखी हुई भी है। सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है, उसके चोर डाकू दुष्ट हत्यारे वे भी उनकी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, जंगल में बैठा भजन करता है तो चोर डाका चोरी करने वाले डाका डालने वाले धड़ैत वे उन संतों की सेवा करते हैं। इस वास्ते सहायता करने वाला सब संसार तैयार है, संत महात्मा तैयार है, भगवान तैयार है, गुरु महाराज तैयार है, दुनिया मात्र उसके उद्धार करने में सहायता करने के लिए तैयार रहती है। स्वयं ये नहीं चाहता और स्वयं अविनाशी होता हुआ नाशवान चीजों से ही सुख चाहता है। संग्रह सुख दो बात ये बताई थी गीता में, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, संग्रह ले लें कुछ न कुछ संग्रह कर लें और सुख भोग लें, ये दो चीज की इच्छा घातक है, दो चीज नहीं घातक। पर जिनकी हमारे पास में बहुत चीज हो जाए, रुपया हो जाए, मान हो जाए, सत्कार हो जाए, आदर हो जाए, हमारे बहुत से कुटुम्बी हो जाए, हमारी सेवा बहुत से करे, बहुत से हमारी प्रशंसा करे, ये चाहना डबोने वाली है और सुख भोग है ये स्थान देने वाली है। इधर त्याग करो तो मुक्ति सुसे, इनसे यही तो बंधन है, इनका त्याग करो मुक्ति तो होगी। आप यहाँ बंधन को छोड़ते नहीं, मुक्ति की बातें करो कभी होने की है नहीं, मौज करो। नारायण 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 नारायण, अपने अभी दूसरा अध्याय चल रहा है गीता का, ये विषय है कि मोह कलिल को चल जाएगा, सुत विप्रतिपत्तों को चल जाएगा, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तेरी बुद्धि अचल और निश्चल ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त होगा। तो अर्जुन पूछते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण क्या है, वो समाधि परमात्मा में स्थित हो गया उसके लक्षण क्या है, और वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है और चलता कैसे है, चार प्रश्न पूछे, उसके क्या लक्षण होते हैं पहले, और कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये चीज चार लक्षण पूछे। यही तो साक्षात लक्षण, एक उसका बोलना बैठना चलना कैसा होता है। तो एक श्लोक में उत्तर दिया खास उनकी भाषा, उसका वास्तव में लक्षण क्या है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संसार की कामनाएं हैं इनका अच्छी तरह से त्याग कर दे, कोई इच्छा नहीं मन में किसी बात की, न भुक्ति की न मुक्ति की कोई चाहना, न जीने की न मरने की, प्रजाति उनका प्रजाति प्रकर्षण जाति सर्वथा त्याग कर दे, और फिर अपने आत्मा में संतुष्ट होगा, अपने में केवल स्वरूप में, इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं। दो चीज बताई, संपूर्ण कामनाओं का त्याग और अपने स्वरूप में स्थिति, ये खास लक्षण है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ये हुआ लक्षण। अब पूछते हैं भाई किम प्रभाषित, बोलता कैसे है, तो बोलने की बात बताते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना, बोलने में ये नहीं कि हिंदी बोलता है, संस्कृत बोलता है, गुजराती बोलता है, कर्नाटकी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, ये नहीं है। बोलता बोलता है वो किस भाव से बोलता है, भीतर के भावों में फर्क पड़ता है, ऊपर की क्रियाओं में फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं लगता। विश्वास है स्वसंवेद्य स्थिति कहते हैं, पर संवेद्य नहीं है। उसके भाषण में क्या बात होती है तो ये दो श्लोकों में बताते हैं। दुखेशु अनुद्विग्नमना, दुख से दुख आ जाए, महान दुख आ जाए, तो मन में उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, और सुखों में स्प्रिया नहीं होती, सुख मिल जाए दुख न मिले ऐसा दिन के हार शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, वीर राग भय क्रोध, राग और भय क्रोध जिनके चले गए वो स्थिति है। मुनि रुच्यते, मुनि ये मुनि शब्द उसको उत्तर है, मननशील है, परमात्म तत्व का ही मनन करता रहता है, यह सर्वत्र अनुष्ठ है, किसी जगह भी अधिक स्नेह नहीं है, किसी जगह भी फंसावट नहीं है, तत्त्व प्राप्त शुभ अशुभ, शुभ हो अशुभ हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ठीक हो बेठीक हो, जैसी कैसी परिस्थिति आती हो उसमें किसी में एक में अभिस्नेह नहीं है, न अभिनंदती न द्वेषती, न उसकी प्रशंसा करता है न उसकी निंदा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, तो राग द्वेष रहित उनकी स्थिति है, ये तत्व हुआ। बोलने में भी ना अभिनंदन, न अभिनंदन करता है, न किसी की प्रशंसा करता है, न किसी से बैर रखता है, बोलता है ऐसा नहीं। तो स्थिति क्यों प्रकाशित, बैठता कैसे है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट कर बैठ जाता है। कछुआ होता है, चार पग होते हैं, एक नाल होती है, एक पूंछ होता है, छह होते है, वो पगों से ऐसे चलता है, जल में भी ऐसे तैरता है और बैठता है खोपड़ी नीचे छवों को यू कर ले, चारों पगों को, नाल को और पूंछ को खोपड़ी नीचे बैठ जाता है। वो जैसे संपूर्ण अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है। पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये छह है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो महाराज ऐसे विषय तो कोई छोड़ दे आदमी, चुप हो जाए, उसमें फिर छूट जाते हैं। विषय भी निबंधे निराहार से दे ही ना, दे ही है देहाभिमान है, उसके भी विषय तो छूट जाते हैं। कब के निराहार से विषयों का आहार नहीं करता, अथवा भोजन नहीं करता, अन्न जल नहीं लेता, तो ये सब विषय छूट जाते हैं। परंतु रस वर्जम, उन विषयों में रस बुद्धि रहती है, चीज बढ़िया है, हमें त्याग किया, हम पैसे नहीं लेते, परंतु भीतर में पैसे है, बढ़िया चीज, सब चीज मिलती है, हम मीठा नहीं लेते, पर मनवाते मीठा है बढ़िया, ये है बढ़िया, इसको रस कहते हैं, इसकी रस बुद्धि है नाम इसका। हम त्याग कर देते हैं तो अच्छा है त्याग करना, परंतु रस को छोड़कर त्याग करते हैं, रस इसके स्थिर पैकी पुरुष के रसो भी नहीं होते थे, जैसे कछुए की तरह बैठता है, परंतु विषयों में रस बुद्धि भी नहीं आती, ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया मिल जाए, ये भी परम दृष्टा नहीं होते थे। किससे होते, परम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसे निवृत्त हो जाता है, क्यों परमात्मा में जैसा रस है वैसा किसी में रस है ही नहीं, आप सूझ जाता है। महाराज ऐसे रस रह जाए तो क्या से? रस बुद्धि रह जाए, विषयों से इंद्रियों को रोक लिया जाए, रस रह जाए तो क्या हाल है? तो भगवान कहते हैं, यद तो युव कौन थे पुरुष से विवस्थित, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार विवेकी पुरुष है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न भी करता है, परंतु रस बुद्धि समझ लेती है तब तक इंद्रिया प्रमाता, इंद्रिया ऐसी प्रमोशनशील है, बलात्कार से मन को खींच लेती है। रस बुद्धि जब तक रहती है तब वो निरुपद्रव नहीं होता, उसकी संसार की निवृत्ति नहीं होती। इस वास्ते तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत, सब इंद्रियों का संयम करके वो बैठे, ये बैठने की बात है। वसे यद्रिया, जिसकी इंद्रिया वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। हो तो क्या है प्रत्या, जिसकी विषय इंद्रियों वश में नहीं है तो क्या हर्ज हुआ? ऊपर से सब त्याग करके बैठ जाए एकांत में, संबंध नहीं रखे संसार से, तो कहते हैं मतलब को मन अगर खुला रहेगा तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सूझ जाए, विषयों का ख्याल करने से, याद करने से उन विषयों में संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, प्रियता हो जाती है। ये सेवन करता है न मन में तो राग पैदा हो जाती है, अफीम जैसी काली बेस्वादी चीज उसके सेवन करे तो उसमें से रहा नहीं जाता, और उस अफीम को खाते चबाते हैं, रस लेते हैं, खूब रस लेते हैं, राजी होते हैं, ये सेवन करते करते उसमें प्रियता पैदा हो जाती है, अपने मिले चीज में प्रियता हो जाए, खूब चबाते हैं, जब हमारे देखी हुई बात है, ये खूब चबाते हैं अच्छे तरह से, मुंह में खूब भर जाए पानी मैं वो हीरा अमल का, तब गिरते हैं, रस लेते हैं, तो वो सेवन करते 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 उसमें विशेषता अधिक न लग जाती है, और संगात संग पैदा हुआ फिर कामना उसी भी होना चाहिए, हमारे और मिलना चाहिए, कामना में कोई बात आ जाए तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, समूहा स्मृति करो, समूह से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति बनसात बुद्धि नाश हो, फिर बुद्धि काम नहीं करती और बुद्धि नाशात परमेश्वर पसंद हो जाता। तो केवल विषयों का ध्यान करने से उसका पतन हो जाता है। ये दो श्लोकों में पतन की क्रिया बताई। ध्यान से संग होता है, संग से कामना होती है, कामना से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह होते स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से पतन हो जाता है। केवल विषयों की याद करने से आगे दो श्लोकों में एक विशेष बात बताते हैं। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय, राग द्वेष रहित इंद्रियों का द्वारा विषयों का आचरण करे, पर इंद्रियों कैसी आत्मवशी अपने वशीभूत हो, ऐसा विधेयात्मा अंतकरण भी वशीभूत हो, इंद्रियों की वशीभूत हो, तो प्रसाद की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, स्वच्छ निर्मल हो जाते हैं, खूब प्रसन्नता आनंद रहता है। प्रसाद सर्व दुखानों को प्रसाद होने पर संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है, और प्रसन्न चेतो याशु बुद्धि, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से स्थिर बुद्धि हो जाता है, और विषयों का चिंतन मात्र करने से पतन हो जाता है। कारण क्या कि विषयों में रस बुद्धि होती है, तब ना एकांत में उसको कल पड़ती है न व्यवहार में, राग द्वेष रहित विषयों का सेवन किया जाए खूब तो भी उसकी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी विलक्षण बात है। तो संसार में जो रस बुद्धि है संग्रह में और संयोग जन्य सुख में आकर्षण है, तब तक मुक्ति नहीं होगी। बातें भले कितनी कहो, बढ़िया बढ़िया चारों वेद पढ़ जाए, सत शास्त्र पढ़ जाए, पुराण पढ़ जाए, कथा सुंदर कहते, व्याख्यान बहुत बढ़िया दे दे, परंतु जब तक पदार्थों में खिंचाव है, संग्रह की इच्छा है, सुभोग की इच्छा है, तब तक मुक्ति नहीं होगी। नास्त बुद्धि अयुक्त, जो अयुक्त है, दो बात आई यहाँ, एक तो विषयों का मन इंद्रियों का विषयों से रहित करना, एक मन से इंद्रियों का त्याग करना, रस बुद्धि का त्याग करना। तो जो अयुक्त है, जिसके मन इंद्रिया वश में नहीं है, उसकी भावना रहती परमात्मा शब्द के, ये भावना नहीं होती, रस बुद्धि होती, रस को खींचता है अपनी तरफ, चलता है यू सब जगह, परमात्मा इसको नहीं जान सकता और अशांत है, और अशांत रहता है, जिनकी भावना भगवान की नहीं है, परमात्मा की नहीं, उस अशांत रहते है, अशांत से कुछ है सुखम, उसको सुख कैसे मिलेगा। इंद्रियांग चलता मनो, जिस इंद्रियों के विचरण करते हुए जहाँ मन भीतर से लग जाता है, वो एक ही मन इसकी प्रज्ञा को हर लेता है। जैसे नौका चलती है जल में, पर वो बजमान होता है, हवा चलती है तो हवा मन उसको चलने नहीं देती, खींच कर ले जाती है। ऐसे मन किसी एक विषय में भी लग जाता है तो उनको पथ भ्रष्ट कर देती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तस्मात इसलिए हेतु से महाबाहो, सब प्रकार से इंद्रियों वश में है, इंद्रियों के इंद्रियों के अर्थों से उसी बुद्धि की स्थिति रहती है। इंद्रियों और मन ये कब्जे में काम करता है, जिनको अधिकार में रखता है वही करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब उपसंहार में बात बताते हैं कि दोनों के क्या फर्क है, एक बुद्धि जिसकी स्थिर है और एक बुद्धि स्थिर नहीं है। एक बात आपको कह दें, लोग मन की स्थिरता को बहुत विशेष महत्व देते हैं, मन स्थिर होना चाहिए, मन की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता है वो मूल्यवान ज्यादा है। मन स्थिर तो होने पर बुद्धि स्थिर न होने से उसकी मुक्ति नहीं होती, बुद्धि स्थिर होने से मन स्थिर आप साफ हो जाता है। तो बुद्धि का स्थिर होना क्या, एक ध्येय बना लिया कि हमें अपना कल्याण करना है, एक ही मिस्टेक है, जो सारे आत्मी का बुद्धि एक है, कुल बंदे में पहले कहकर आया कि एक ही बुद्धि होती है, बुद्धि हो अब व्यवसाय हो निश्चय नहीं होगी, अनेक बुद्धि और अनेक शाखाओं वाली होती है। तो उनका क्या फर्क है, जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका नहीं है, उनकी दिन और रात का फर्क है। या दिशा सर्वभूताम, सब प्राणियों की रात है, परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, बिल्कुल अंधेरी रात है पता ही नहीं। जैसे हम जागृत से संयमी इंद्रियों और मन को वश में करने वाला उसमें जागता है, और जैसे हम जागृति भूतानी प्राणी जिस जात में संसार में भोग भोग ले करे, मान बधाई हो जाएगी, नाम हो जाएगा, मरने पर भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसे संसार में रहते हैं। वह मुनि की दृष्टि में देखते हुए रात है, ये रात में तो थोड़ा करते सब रात है, सांसारिक विषयों में लगे हुए रात में है और भी दिन में रात दिन का दृष्टांत है कि वो कैसे स्थित होते हैं। तो समुद्र के दृष्टांत से देते हैं, आप पूज्यमान प्रशेषम समुद्र माप प्रभसंत यदत तद्वत कामायम प्रभसंति सर्वे सशांति मा प्रभोति न काम कामी। जैसे समुद्र पूरा भरा हुआ है, उनमें कमी नहीं है जल की, चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा है उस समुद्र का पुत्र है, उसके उद्यास होता है तो मेल दो दो मेल तक चंद्रमा बढ़ जाए, समुद्र बढ़ जाता है, बड़ी बड़ी लहरा आती है और फिर चंद्रमा घट जाता है तो पासा अमर हो जाता है। हजारों नदियों पर थी चातुर्मास के समय अनगिनत की नदियां आकर के समुद्र में पड़ती है, तो समुद्र में बाढ़ नहीं आता कि समुद्र भर गया भाई अब तो इसका नेष्टा करो, कोई निकले तो पानी घना भर गया, ऐसा नहीं होता। और गर्मी के दिनों में नदियां सूख जाती है, बंद हो जाती है, और एक बड़वा नल होती है, जल में एक अग्नि लगती है, अग्नि जल में वो आग लगती है तो जल को खा जाती है, सुखा देती है, वो अग्नि लग जाए इधर इधर तो जल आना बंद हो गया, इधर आग लगी पानी बलने लगे सबका सभी, तो कोई समुद्र में कमी नहीं आती। आ पूरी बात असल प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठा कैसे रहता है, पृथ्वी से भी लेवल में ऊंचा है समुद्र, बन मर्यादा को नहीं छोड़ता, पढ़े के समय छोड़ता है तो सब डूब जाता है संसार। ऐसे आपूरी मान असल प्रतिष्ठा समुद्र में आप प्रवेशन दिए, ऐसे समुद्र में संपूर्ण नदियां आकर प्रविष्ट होती है, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ है पूर्ण तत्व को प्राप्त हुआ है, ऐसे उनमें जितने पदार्थ सबसे आते हैं तो उसे शांति मापी बड़ी शांति रहे, अपनी मर्यादा पर रहता है शांति रहती, न काम कामी भोगों की कामना वाले को शांति नहीं मिलती। कामना भोगों का भी कामना इच्छा का भी है, काम कामी भोगों की इच्छा वाले को शांति नहीं मिलती। तो महाराज शांति किसको मिलती है, दो श्लोक है, विहाय कामान यह सर्वान पुमान से निष्प्रिय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निष्प्रिय बेप्रभाव होकर विचरता है, निर्मम और निरहंकार, ममता नहीं है तो अहंता भी नहीं है, किसी चीजों में रुपये पैसों में किसी में ममता भी नहीं है और अभिमान भी नहीं है, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, ऐसा अहंकार नहीं है, उसको शांति मिलती है। ये ममता रहती है अभिमान रहता तब से शांति के दर्शन नहीं होते। तो ऐसा आचरण प्रतिष्ठा है उसको समुद्र की तरह है, उसको शांति मिलती है। ऐसा ब्राह्मण जी निर्मम निरहंकार हो गया, महाराज अहंकार से रहित हो गया, मैं हूं ये अहंकार होता है, तो इसके न रहने पर उसकी स्थिति क्या होती, कहां स्थित होता है, अभी तो अहंकार में स्थित होता है कि ऐसा ब्राह्मण स्थिति है जो परमात्म तत्व परिपूर्ण है, उसकी स्थिति अहंकार में थोड़ी है, उस ब्राह्मण स्थिति को प्राप्त हो जाए, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म की स्थिति है वो स्थिति उसकी है, उसी स्थिति और ब्रह्म की स्थिति है, वहाँ दो चीज रहती ही नहीं, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पास है। मेरे नाम प्राप्त भी मोहित, इसको प्राप्त होके मोहित नहीं होता, मोह होता है, मोह मूढ़ता अज्ञान इसमें हो जाता, इसमें नहीं होता। ऐसी स्थिति अंतकाल में भी हो जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। श्याम अंत काल भी अश्याम ब्राह्मी ब्राह्मी स्तम इस स्थिति में स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, अंत काल में हो जाए। अरे पहले निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति उसका से कहना ही क्या है, ये क्या है ये बात है। तो ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है जो बताया है 54 में प्रश्न से चार, पिछपन से ये प्रश्न उठे, उन चारों का प्रश्नों का उत्तर दिया, इसमें समाप्ति हो गई। ये दूसरा अध्याय हुआ, अब पहला अध्याय रहा है। नारायण 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 राम राम राम। कल बात सोचे थे कि व्यवहार कैसे करना चाहिए, देखो इसके लिए एक मार्मिक बात बताऊं। परमात्मा तत्व तो बिगड़ा नहीं है, किसी का कभी बिगड़ता नहीं, बिगड़ा नहीं, बिगड़ सकता नहीं। बिगड़ा है तो व्यवहार ही बिगड़ा है। संसार के साथ जो व्यवहार करते हैं वो राग और द्वेष और हर्ष और शोक और चिंता और भय और उद्वेग और हलचल, ये चीजें इनमें फंसा हुआ आदमी दुख पा रहा है। अगर इससे ऊंचा उठ जाए तो मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक। उनमें कभी जन्मन होगा, कभी जन्मन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। एक सर्व की मुनि हुए हैं, उसका संक्षेप शारीरिक भाष्य बनाया हुआ, वो लिखते हैं कि यद पाद पंकज रज शैणम बिना मे सन्न प्यसन्नो पर पुरुष पुराशी। जब तक गुरु महाराज के चरणों का शरण नहीं लिया, जो तत्व जीवन मुक्त महात्मा है उनके चरणों का जब तक आश्रय नहीं लिया, यद पाद पंकज रज शैणम उनको शनिर जी का आश्रय नहीं लिया तो सन्न प्यसन्न ऊपर पुरुष पुराशी पूरा सन्न भी असन्न ऊपर पुरुष परमात्मा असन्निवासी सता ऊंचा हुआ भी असत की तरह था। यद पाद पंकज श्रेणम बिना मे सन्न प्यसन्न ऊपर पुरुष पुराशी पाद पंकज शैणाद इधानी और ऋषि का आश्रय लिया सब ना शीत न पचास न भविष्य भेद बुद्धि न भेद बुद्धि पहले थी न भेद बुद्धि है न भेद बुद्धि होगी। पहले तत्व होते हुए नहीं की तरह था, उसकी प्राप्ति होने पर भेद बुद्धि थी ही नहीं, कभी जन्म हुआ ही नहीं, था ही नहीं जन्म, भेद बुद्धि थी नहीं और है नहीं और फिर वो शक्ति नहीं कभी, ऐसी बात है। तो सिद्ध क्या हुआ, व्यवहार ठीक करना है। परमात्म तत्व तो स्वतः सिद्ध पड़ा हुआ है, व्यवहार सुधार, व्यवहार सुधार के लिए कल मैंने बातें बताई। गृहस्थ है, गृहस्थ क्या है, ये एक पाठशाला है। पाठशाला में जैसे पढ़ाई होती है ऐसे गृहस्थ समय ये पढ़ाई की पाठशाला है कि बाबा जी हो गए तो बाबा जी के अब क्या किस गए, वो तो अलग हो गए, पर अलग हो जाते हैं उनमें एक कचास रहती है। संसार में रहते हुए जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं उनमें कचाई नहीं रहती, सच्चाई होती है तो कच्चाई ऐसी नहीं, उनमें साधु बाबा लोगों की कच्चाई होती है। वो क्या होती है कि जहाँ मन के अनुकूल न पड़े, चाहे अच्छा संग मिले, अच्छा ठीक तरह सब तरह का आराम है और मुक्ति की बातें मिलती है, कल्याण की बातें मिलती है, पर हमारे अनुकूल नहीं होती तो अनुकूलता के लिए चट कमरे चल देते हैं। अब गृहस्थ के अनुकूल नहीं है तो कहाँ जाओ बताओ, माँ को छोड़ेगा, बाप को छोड़ेगा, स्त्री को छोड़ेगा, पुत्रों को छोड़ेगा, भाई को छोड़ेगा, भाई जी किसको छोड़ेगा, उनमें ये कचास नहीं होती। कृष्णा से मैं रहते हुए जो परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं बड़े पक्के होते हैं। इस वास्ते यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम समाहु पंडितम बुधा, जिसके सबके समारंभ कामना से नहीं थे, संकल्प नहीं थे, और ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म भस्म हो गए, उसको पंडित भी पंडित कहते हैं। गेहेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता, पंडितों में भी पंडित है। चाहु पंडितम बुधा बुधा तम पंडितम प्राहु बुधा नाम पंडित लोग, वे भी उनको पंडित कहते हैं। सब काम करते हैं पर निर्णय पद्म पत्र में वाम बसा, ये कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से भिजता नहीं, जल की बूंद ऊपर मोती की तरह दूसरी सी रहती है, उसे भेदन नहीं होती। इसलिए संसार में रहते वो मुक्त हो जाते हैं। कब के राग द्वेष छोड़ दे, हर सुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान हमारे प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति आ जाते वो भी बात, अनुकूल से अनुकूल स्थिति आ जाते वही बात, ऐसे जो रहते हैं उनसे चल जाते हैं। तो गृहस्थाश्रम में बड़ी भारी बढ़िया पढ़ाई होती है अगर वे राग द्वेष छोड़ने का उद्देश्य कर रहे अपने राग द्वेष छोड़ना है और संसार की सेवा करना है। एक एक भाई एक एक बहन घरों में रहते हुए केवल ये देवे कि काम धंधा तो मैं करूं, आराम मान बढ़ाई सत्कार मिले, इसी बात कहने में छोटी है। करके देखो तो जोर आता है, कुछ कब तक जोर आता है, जब अनुकूलता की इच्छा है तब तो जोर आता है, और अनुकूल पदार्थों की व्यक्ति की वस्तुओं की इच्छा बढ़ जाए तो बड़ा सुगम काम हो जाता है, सबकी सेवा हो जाए घर में, सबकी छोटे बड़े समान जो है सबका आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले। पर ये होता है पक्षपात छोड़ने से, पक्षपात रखने से मनुष्य फंस जाता है, घरों में पक्षपात हो जाता है, माता बहनों रहती है पर इनमें पक्षपात होता है, अपने पति अपने छोरे के लिए फटका चोपड़े से थोड़ा सा अधिक कर देती है और दूसरों के लिए साधारण दे देती है, ये पक्षपात है। पंक्ति भेदी महापापी, पंक्ति भेद कर देती है, हो जाता है, करे क्या छोड़ा है। घर में बालक होते हैं, सासू के बालक भी होते हैं और जेठानी के बालक भी होते हैं, देवरानी के बालक होते हैं, ननद के बालक होते हैं और अपने बालक होते हैं, इससे ही सही बालक है, घर में पांच ही तो है, सासू के बालक, देवरानी के बालक, जेठानी के बालक, ननद के बालक, अपने बालक, देव दो चार होते हैं, दो चार होता है देवर की दूरी हो जाए, नंद कहीं दूरी हो जाती है, नंद नंद के बालक नहीं होता, परंतु अधिक से अधिक पांचों के बालक होते हैं। इन बालकों में पक्षपात न रखे, सबका पालन करे प्यार से स्नेह से, तो ये करती नहीं बहनों माताओं, इसी कृपा करो अपने रसोई बने कोई चीज हो तो पहले ननद के बालकों को दो, क्योंकि वो आगंतुक वो मेहमान है, कर जो बीमार हो उनको दो, जिसके बालक हुआ है जा पाए थे उसको दो, और जो रोगी है उसको दो, और कोई आया हुआ मेहमान है उसको दो, इनको पहले दो, और नई बहू आई है ना उसको पहले दो, पीछे अपने घर वालों को दो, और सबके बाद अपने बच्चों को, ऐसे बर्ताव करो तो आपकी बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा। और पड़ोसियों के बालक आ जाए तो पड़ोसी बालक को दो पहले। कितना आपके साथ संबंध दूर है उनको पहले दो, और जिनका संबंध अपने साथ घने से उनको पीछे दो। दूसरी बात वो जरा थोड़ी कठिन तो है, और करो तो बड़ा बढ़िया होगी। दूर है उनको पहले भी दो और अधिक मात्रा में दो, तो बराबर दो, पर थोड़ा बहुत दूसरों में अधिक रहना, अपने नजदीक वाला भी थोड़ा, अपने बच्चे को थोड़ा पहले दो, ज्यादा दो, बहुत बड़ा। और पड़ोसियों के बालक आ जाए तो पड़ोसी बालक को दो पहले। कितना आपके साथ संबंध दूर है उनको पहले दो, और जिनका संबंध अपने साथ घने से उनको पीछे दो। दूसरी बात वो जरा थोड़ी कठिन तो है, और करो तो बड़ा बढ़िया होगी। दूर है उनको पहले भी दो और अधिक मात्रा में दो, तो बराबर दो, पर थोड़ा बहुत दूसरों में अधिक रहना, अपने नजदीक वाला भी थोड़ा, अपने बच्चे को थोड़ा पहले दो, ज्यादा दो। दो बात, तीसरी बात है दूसरे बालक उनको बढ़िया दो, और बचा खुशा अपने बालक को दो। कठिन तो पड़ती बात, अपने बच्चों को दे दिया जाए तो ऐसा नहीं तो बरोबर दो, कोई परवाह नहीं, समान जी से दो, परंतु ममता अपने बालकों को रखो, ये गलती की बात। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप समझते हो भोला है, बोल रही है, बड़े समझदार है ये। छोटा बालक घुटनों का बल चलता है, गुड़ा गुडालिया घुटनों का बल चलता है, उसको आप देखो प्यार से देखो तो हंस करके गोदी में आ जाएगा, प्यार से नहीं देखो आपको देख कर चट लौट जाएगा। वो छोटा बच्चा भोला नहीं है, समझता है, उसको ऐसा समझे ये क्या समझे, समझे। तो छोटे बच्चों के साथ में भी स्नेह करो, छोटे बालकों के साथ स्नेह करने से छोटे बालक की माँ खुश हो जाएगी। तो आप उसके बालक का प्यार करो, वो आपके बालक का प्यार करे, तो आपस में आपका स्नेह हो जाएगा। कि बच्चे के राजी होने से माँ राजी हो जाती है, तो आपस में स्नेह हो जाएगा। और पक्षपात रखो कि अपने बच्चे का स्नेह तो ज्यादा करो, दूसरों के नहीं करो, तो आपस में खटपट होगी, लड़ाई हो जाएगी। इस वास्ते ऐसा करो उसे ठीक रहेगा। और जो पक्षपात करती है, अपने बच्चे को ज्यादा देती है, प्यार से देती है, पैसे देती है, छिपा छिपा कर देती है, कोने में लुका रहे हो, बैठा लड़का ले, दूसरा देख रहे नहीं छिपो। सोरे इतने चतुर होते हैं, मना कितना छिपा दो पट कर जाते हैं कि आपके बेटे को खिलाते हैं छिपा छिपा करके। तो किसी का देने का स्वभाव होता है छिपा कर देने का, दूसरे लड़कों पर उसका बुरा असर पड़ता है। आज तो आप लड़के को सेवा दो, अरे लाड प्यार से ज्यादा पैदा किए हुए पाले हुए बालक प्राय करके अच्छे नहीं निकलते हैं। त्याग होता है वे बालक बढ़िया निकलते हैं, पेटू और चट्टू है अच्छे सुपात नहीं निकलते। बड़े हो जाने पर वो सोरा तो आपकी सेवा करेगा नहीं, और दूसरे सोरों गड़बड़ी कर दी आपने, वे करेगा नहीं, तो वे कहते आप कर ले ले सेवा ले 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 ले, ऐसा करेंगे। और सब सेवा को सबको प्यार से दोगी तो सब कहते हैं कि हमारी माँ ही है। मेरे ऐसे सज्जन मिले हैं, उसने कहा कि मैं तो अपनी भौजाई की गोदी में ही पढ़ा हूँ, हमारे भाई बड़े थे, भौजाई बड़ी अवस्था की थी, तो भौजाई बड़े गोद में रखती मेरे को, देवर को, और उसी गोद में ही पढ़ा हूँ, वहाँ मेरे भाभी थी, उनसे मिलते गए, बड़ा आदर करता था। तो बाहर के जितने गए उन बालकों का आदर करो, तो कोई कपूत निकले तो उनमें कोई सपूत भी निकल जाएगा, तो आप वो सेवा करेगा। सब कपूत थोड़े निकलेंगे, मोह वाला कपूत होता है, मोह करके वो कपूत निकलेगा, प्राय सपूत कम निकलेगा उसमें। ऐसे त्याग पूर्व पड़े हुए बालक निकलेंगे सपूत, तो आपकी सेवा करेंगे, तो आपकी सेवा भी ज्यादा होगी और अंतर भी निर्मल होगा, परमात्मा की प्राप्ति भी जल्दी होगी। कल बताई देने बातें, जितना व्यवहार अच्छा रखोगे उतना अंतर निर्मल होगा, संसार में आदर होगा और चित्त में प्रसन्नता होगी, करके देख लो। अगर पक्षवात करोगे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। किसी किसी बहन का माता का भाव होता है सेवा करने का, दूसरों को देने का, तो वे सेवा करती है। कोई बाहर से मिठाई आ जाए, हांसी आ जाए और उदार है कोई बहन, उसको दे दी जाए, तो सब लड़के खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा बच्चों को बुलाकर ला बेटा ये लो ये लो, सब बालक खुश हो जाते हैं। और जिसका देने का स्वभाव नहीं है, संचय का स्वभाव है, वो देती नहीं, और उसको वो हांसी लगे आज तो छोड़े नहीं करना वाला, आज तो गई कुएं में अपना हाथ आवर देने, तो बच्चों को धक्का लगता है, तो उसका पाप लगता है, फिर खुश हो जाते हैं बच्चे थोड़ी देर में, तो उसे बड़ा पुण्य होता है। मैं तो ये उपाय बताता हूँ, जिनके कोई घर का मर जाए और बड़ा शोक हो, तो गरीब घरों के बालकों में वहां जाओ और उनके चाकू सीताराम कहो और उनको लड्डू बांटो, अरे गांव में गुड़ी बांटो, नहीं जलेबी बांटो, रसगुल्ला बांटो, बच्चों को बच्चे खा कूदने लगेंगे, आपका शोक दूर हो जाएगा। ऐसे मैं करा करके देखा, केवल पुस्तकों की बात नहीं है, ऐसी बात हुई है, अरे वो शोक चिंता मिटी है, दरिद्रता मिटती है, मगर बच्चों के आशीर्वाद से, बच्चे जैसे थोड़े में राजी, साधुओं को ब्राह्मणों को बढ़िया दोगे तो वे राजी नहीं होते, क्यों साधुओं को मिलता है गरीब मोहम्मद बहुत माल मिलता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, और गरीब घरों के बच्चों को मिलता नहीं, तो जिनको नहीं मिलता उनके देने से खुशी बहुत आती है। थे ब्राह्मणों को धन दो तो के कितना धन है उसमें से कितना खर्च किया है, बालक कभी नहीं देखेंगे तुम्हारे पास कितना धन है कितना खर्च किया है, वो तो मिले हुए राजी हो जाए कूदने लग जाएंगे, तो उनकी प्रसन्नता लो, घर वालों की भी प्रसन्नता लो। दो तरह से होती है, चीज वस्तु दो और काम धंधा करो, इसमें से प्रश्न होते हैं, उनका काम धंधा कर दो और चीज वस्तु दो, अपनी चीज भी ले ले, किस तरह से काम में ले ले, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, तो कितना बढ़िया काम हो जाए आपस में। पर ईर्ष्या होती है, मेरी चीज ये जेठानी क्यों लेगी, जेठ के घर में क्यों चलेगी, देवर के घर में क्यों चलेगी, मेरी कटोरी वहां कैसे चली गई, गिलास भी वहां कैसे चलेगी, अरे वो चलेगी तो अच्छी बात है, वो राजी हो जाए कि अपनी सारी बर्तो दूसरे आगे इसमें जीवों घसी तो आई घसी हमारे साथ ठीक रहेगी, तो इस तरह से वो राजी हो जाएगी, तो आपको पुण्य हो जाएगा, दान का पुण्य हो जाएगा, तो अपनी चीजें वस्तुओं से सही काम ले कोई मानी ले, पर कृपणता होती है तो अपनी चीज नहीं देती, अपनी चीज स्वीकार करती, छुपा करके दूसरों की चीज बनती है कि बस खराब है तो वही खराब होगी, घसी जाएगी, हमारी थाली हमारी कटोरी हमारी गिलास नहीं घसे, क्यों खाते पीते मांस दें तो घस जाती है, हमारी ठीक रहेगी, बहनों कुछ ठीक रहने वाले नहीं, छोड़ करके मरना पड़ेगा, ठीक से ठीक बढ़िया अपनी चीजों करे तो ही मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अगर घटिया रही और उपकार में लग गई तो मरना पड़ेगा, तो मृत्यु तो आ जाएगी, फिर ये चीजें यही छूट जाएगी, कितना दिन रुखवाली करोगे उन चीजों की, हाथों से अगर दे दो बांटे नहीं आपने बारे तो धारे किसान उठा था, खाओ खर्चो भलपण खाटो सुख रहते बहतो हाथे दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे, खाओ खर्चो भलपण खाटो सुख रहते बहतो हाथे दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे, साथ नहीं जाएगा, जितना दूसरों को दोगे दूसरों के हित में लगाओगे दूसरों की प्रसन्नता ले लोगे उतना ठीक होगा, गुरुजनों की और अपाहिज अरक्षित अंग भंग गरीब उनकी ये दो की आज्ञा पालन करना दो की प्रसन्नता लेगा बड़ी भारी ऊंच दर्जे की बात है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, जैसे सब जगह जल परिपूर्ण है परंतु कुआ होता वहां मिलते हैं कुआ नहीं वहां मिलता नहीं पानी तो है, ऐसे पाइप में जल भरा हुआ है पर जहां कर लगी वहां मिलता है और उसी मिलता नहीं, ऐसे संसार में जो गरीब है दीन है दुखिया है उनकी सेवा में भगवान मिलते हैं, और संत है महात्मा है तत्वज्ञ है अपने बूढ़े माई थे माता पिता दादा दादी उनकी सेवा करो, ये दो जगह ये कल खुली हुई है उनकी सेवा करके लाभ ले लो, बड़े बूढ़ों को आदर नहीं करते सत्कार नहीं करते तो मुश्किल होगी बड़ा, फिर आपका भी आदर सत्कार नहीं होगा, आप अपने सासू की सेवा नहीं करो और बेटे बहुओं से सेवा चाहो ये होने का नहीं है, अगर आप अपनी सासू की सेवा करो तो तुम्हारी बहू भी सेवा करने वाली आवेगी करके नहीं बोलो, अपनी लड़कियों को भी समझाओगे बेटा वहां सास की सेवा करो बूढ़ी माता की सेवा ज्यादा करो, ये शिक्षा इस लेने से बड़ा लाभ होता है, इसके धारण करने से कल्याण होता है, चित्त में प्रसन्नता होगी, चित्त में करके देख लो, अरे किसी आदमी को रास्ता बताओ और किसी अच्छा देखो इसमें ऐसे जाना ये आते आगे आगे सड़क आ जाएगी सड़क के बाद में ऐसे जाना फिर वहां जाने वहां ऐसे सड़क इस सड़क में चले जाओ ऐसे प्रेम से रास्ता बता रहो तो इसलिए आनंद आने लगेगा, इतने से नहीं दूसरों का हित पर हित बस दिन के मन माही तुम कह जग दूर सुनाई पर हित सर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों का हित चाहना है ये बहुत कल्याण की बात है, भगवान को बड़ा प्यारा लगता है वो सबका कल्याण चाहता है सबका हित चाहता है सबका उद्धार चाहता है सबका भला चाहता है, ऐसे उदार आत्माओं की सेवा करने से भगवान बड़े खुश होते हैं और वे महात्मा खुश होते हैं उनसे आशीर्वाद मिलता है उनकी प्रसन्नता से अपने विद्या आती है, अभिवादन शील से नित्य वृद्धों को सेवित नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं और नमस्कार करने का स्वभाव है ऐसे जिनका स्वभाव है सत्वरित से वर्तन से चार चीज बढ़ती है अभिवादन शील से नमस्कार करने का स्वभाव और नित्य ही वृद्धों की बड़ों की बूढ़ों की सेवा करे उसे चार से आयुर्विद्या यशो भलम उम्र बढ़ती है विद्या बढ़ती है संसार में जस होता है और शरीर में बल बढ़ता है निरोगता आती है बड़े खुश होते हैं जिससे अपाहिज अरक्षित खुश होते हैं जिससे ऐसे अच्छे पुरुष हो बूढ़े बड़े हो उनकी सेवा करो उनकी प्रसन्नता लो और वे प्रसन्नता किस बात में रखते हैं, जितने बड़े होंगे तुम्हारे कल्याण में उनकी इच्छा रहती है। तो हमारा तो होगा कल्याण और वे हो जाएंगे राजी, हमारा लोभ लोग पर सुर जाएगा। संसार में जितने संबंध है उन संबंधों में माँ का संबंध सबसे ऊंचा माना गया है। मैंने पहले भी कहा था, फिर भी कहता हूँ, राम जी वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माँ के पास गए और सुना के राम जी को वनवास हो गया है, तो कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो माता का दर्जा ऊंचा है, मैं रखती हूँ तुम मर जाओ। पर वो छोटी माँ ने अगर कह दिया है तो कान शत अवध, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा, माँ से 100 गुना अधिक छोटी माँ का दर्जा, उस माँ ने अगर कहा है तो कान शत अवध समाना, वनवास में जाओ। ये कितनी बात उदार, ये उदार तो वो राम जी की माँ है, तो राम जी माँ को हरेक को बना लेंगे क्या? राम जी तो माँ उसी को बना जो माँ के योग्य होगी, तो उन्हें कितना ऊंचा दर्जा है, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसा उदार भाव रखो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो। आपकी बात नहीं माने तो भी हृदय में उसके हित की भावना भरी है, सर्वभूत हित ही रहता ते प्राप्त लोन से माने, प्राणी मात्र के हित में जो तुम्हारे साथ प्रेम नहीं रखते उनके साथ भी प्रेम रखो, तो सबके साथ आपका प्रेम हो जाएगा। ऐसा प्रेम रखो, हित रखो, तो कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल आनंद हो जाए, किसी को कभी दुख न हो। अरे भाई मन के लड्डू उसमें खांड कमी क्यों डालो, क्या खर्च होता है? ऐसे भावना आपकी ऐसी हो सबके सुख पहुंचने की भावना में क्या पैसा लगता है? भावना ऐसी हो कि सब सुखी हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए, सब तत्व हो जाए, सब जीवनभूत हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब श्रेष्ठ हो जाए, अपने संपर्क में आवे उनको जल्दी से जल्दी कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे ये विद्वान बने, कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये मुक्त कैसे हो जाए, ऐसा भाव जिसका होगा तो दुनिया को मुक्त करने में तो उसकी चलेगी नहीं करी दे, परंतु भगवान राजी हो गया उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं। भगवान कहते हैं कि अल्प शक्ति रखने वाला, अल्प बुद्धि अल्प विद्या वाला भी इतना चाहता है कल्याण करने वाला, तो भाई मेरे को भी चाहिए कि मैं शिक्षा लूं, सबका कल्याण करूं, और औरों का नहीं तो कम से कम इनका तो कल्याण जल्दी करूं, कितने भाव उसकी उनसे। तो ऐसे सबके हित में दिन की प्रीति होती है, उनका कल्याण बहुत जल्दी होता है। भगवान विशेष कृपा करते हैं, भगवान नियत देखते हैं कि इनका नियत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी मान्यता क्या है, ये चाहता क्या है, जितना ही दूसरों का हित चाहता है हृदय से, तो उनका कल्याण भगवान करते हैं। तो भाइयों बहनों अपने सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये भाव रखो। व्यवहार भी अच्छा होगा, परमार्थ भी अच्छा होगा, भगवान बड़े राजी होंगे और आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जहाँ संपता संपत्ति लाना कल में नहीं रहेगी, इसमें लड़ाई मत करो। भाई भाइयों के भी आपस में मतभेद हो तो अलग अलग हो जाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु भीतर का भाव द्वेष का रखा उसमें हर्ज है। हमने ऐसे परिवार देखे, धनी परिवार देखे हैं मेरे काम पर आए, भाई अलग अलग हो गए फिर खटपट रखते। मैंने कहा अब खटपट क्यों रखो, अपने आपस में खटपट होती है इस वास्ते अलग अलग हो जाओ जिससे खटपट में तो प्रेम हो जाए। अब अलग हो गए अब खटपट क्यों रखो, साथ में तो मत नहीं मिलता, सम्मति नहीं मिलती, इस वास्ते खटपट होती है। अब तो अपना अपना काम करो, अब तो प्रेम बढ़ना चाहिए। भाई आपस में नहीं मिलता अलग अलग हो जाओ, तो अलग अलग होना है वो अलग होने के नहीं, भीतर में एकता होने के लिए अलग अलग होना है। आज की एकता क्या है? आज की एकता है कमला नींबू जम्बेरी, संतरा होता है संतरा, उस सब के ऊपर स्थल का एक समान, भीतर देखो तो कड़ी न्यारी न्यारी, अगर कड़ी में देखो केसर न्यारी न्यारी, और खरबूजा होता है बाहर से लकीर एक है, भीतर देखो तो पता ही नहीं बाहर लकीर कौन, सब एक। तो बाहर व्यवहार में अपने घर में आश्रम के अनुसार बर्ताव करो, परंतु भीतर से सबका हिस्सा आना, ये खरबूजे की एकता बढ़िया है, संतरे की एकता, सब एक बैठ जाए खा जा सभी, पर भीतर में अपना पक्षपात, और भीतर में छोटे छोटे स्वरत हो भी पक्षपात। तो भाई ये तो संतरा है और पिछड़े अलग अलग, केसर अलग अलग, ऐसे नहीं, भीतर से भाव एक हो, सर सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु, सबके संतु, कल्याण व्यास हो गया, भक्त हो जाए, भगवान के तत्व की हो गया, जीवन मुक्त हो जाए, सब ऐसा भाव रखोगे तो इस भाव की चूड़ी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है, भाव भगवान को प्यारा है, भगवान प्यारे क्यों लगते हैं, सूर्यम स्वरूप होता है, मात्र प्राणी के परमात्मा सूर्य है, इस वास्ते वो परमात्मा कहलाते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जलवाही सुपदेव प्रभु परमात्मा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सुपेसी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक वाणी भगत, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले, दूसरे के हित का अगर मौका आ जाए तो इससे तत्पर होते हैं, जैसे कोई दुकानदार को ग्राहक मिल जाए ऐसे खुश होकर, सबका हित कैसे हो, ऐसे जिनकी चेष्टा होती भाव रहता है, वे भगवान के बड़े प्यारे होते। नारायण 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 नारायण।